भारत में लिंगानुपात प्रतिरूप सेक्स रेशियो पैटर्न इन इंडिया। भारत में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है। यहाँ सभी आयु वर्ग में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर हैं, जो 1991 में 927 की तुलना में कुछ अधिक है। विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी जन्म के समय पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक होती है। यहाँ औसतन प्रति 1000 पुरुष शिशुओं के जन्म के विपरीत स्त्री शिशुओं के जन्म की संख्या लगभग 937 पाई जाती है। जन्म से लेकर लगभग 50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों की मृत्यु दर भी पुरुषों से अधिक रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों का अनुपात और भी कम हो जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 972 अंकित की गई थी। तब से लेकर निरंतर लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति रही है, जिसमें मात्र 1981 और 2001 की जनगणना वर्ष ही अपवाद है। जनगणना 1941 में लिंगानुपात 945 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष था, जो 1951 ईस्वी में तक लगभग स्थिर रहा। जनगणना वर्ष 1961 और 1971 में लिंगानुपात क्रमशः 941 और 930 था। 1981 में 4 अंकों की वृद्धि के साथ यह 934 हो गया, किंतु अगले दशक में इसमें 7 अंक की गिरावट होने पर यह 1991 में 927 तक पहुंच आया। जनगणना 2001 में 6 अंकों की वृद्धि के साथ लिंगानुपात 933 पाया गया। विभिन्न जनगणना वर्षों में पहला ग्रामीण नगरी भिन्नता। भारत के नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात कम है। नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात के कम रहने की प्रवृत्ति 1901 से लेकर आज तक बराबर बनी हुई है। ध्यातव्य है कि अन्य विकासशील देशों में भी लिंगानुपात की यह प्रवृत्ति मिलती है। जनगणना 1901 में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्रमशः 910 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष था, जो क्रमशः घटते हुए 1951 ईस्वी में क्रमशः 938 और 894 तक पहुंच गया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सी स्त्रियां रोजगार की खोज में समीपवर्ती नगरों में चली जाती हैं और पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। देश के आंतरिक भाग में ग्रामीण और नगरी लिंगानुपात अथवा विभिन्न क्षेत्रों के लिंगानुपात की भिन्नता के लिए मुख्य रूप से जनसंख्या प्रवास ही उत्तरदायी है। भारत के ग्रामीण लिंगानुपात में निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति रही है। ग्रामीण लिंगानुपात पिछले 90 वर्षों में 979 से घटकर 938 हो गया है, किंतु नगरीय लिंगानुपात में कई बार उतार चढ़ाव होते रहे हैं। जनगणना 1941 में नगरीय लिंगानुपात 831 निम्नतम था। वर्ष 1951 में यह बढ़कर 860 हो गया, जो पुनः अगले जनगणना वर्ष 1961 में घटकर 845 हो गया था। इसके पश्चात नगरी लिंगानुपात में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 1991 ईस्वी में लिंगानुपात बढ़कर 894 प्रति 1000 पुरुष हो गया है। भारत में ग्रामीण और नगरी लिंगानुपात में भिन्नता का प्रमुख कारण लिंगपरक प्रवास है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आदि के कारण बड़ी संख्या में लोग रोजगार की खोज में, उच्च शिक्षा आदि के लिए नगरों को प्रवास करते हैं। इन उद्देश्यों से प्रायः पुरुष अपने ग्रामीण गृहों को छोड़कर नगरों में पहुंच जाते हैं। रोजगार की खोज में नगर पहुंचने वाले अधिकांश पुरुष और पुरुष अपने परिवार गांव में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्पाय के कारण वे उनके नगर में रहने और खाने पीने का प्रबंध करने में प्रायः असमर्थ होते हैं। संयुक्त परिवार होने के कारण गांव में इन प्रवासियों के परिवारों को रहने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। इसी प्रकार शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में लड़के नगरों में स्थित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए चले जाते हैं, किंतु सामाजिक आर्थिक कारणों से लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार ग्रामीण नगरीय प्रवास के परिणाम स्वरूप नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के कम हो जाने से स्त्रियों का अनुपात अपेक्षाकृत उच्च हो जाता है। दूसरा, सामाजिक वर्गानुसार भिन्नता। यदि भारत के विभिन्न धार्मिक एवं जाति समुदायों के अनुसार लिंगानुपात का निरीक्षण किया जाए तो उसमें भी उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है। भारत में अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की है, जिसके कारण इस समुदाय का लिंगानुपात सामान्यतः देश के औसत के तुल्य ही रहता है। ईसाइयों में लिंगानुपात उच्चतम और सिखों में न्यूनतम मिलता है। मुसलमानों में लिंगानुपात हिंदुओं की तुलना में कम पाया जाता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों में लिंगानुपात की भिन्नता के लिए उत्तरदायी ठोस प्रमाण के अभाव में केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। इस विषय पर जनसंख्याविदों द्वारा सार्थक शोध की आवश्यकता है। सिखों में स्त्रियों तथा पुरुषों की मृत्यु दर में कोई विशेष अंतर नहीं है, अतः इस समुदाय में निम्न स्त्री अनुपात के लिए संभवतः जन्म के समय अपेक्षाकृत नर शिशुओं का जन्म उत्तरदायी हो सकता है, किंतु इससे संबंधित ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों में व्यापक पर्दा प्रथा तथा स्त्रियों के निम्न जीवन स्तर एवं अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। इससे स्त्री मृत्यु दर प्रायः पुरुष मृत्यु दर से उच्च होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है। ईसाइयों में स्त्रियों तथा पुरुषों की सामाजिक समानता, उच्च शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि के कारण स्त्रियों की मृत्यु दर विकसित देशों की भांति कम पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों का अनुपात अन्य समुदाय की तुलना में अधिक मिलता है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 922 देश के सामान्य लिंगानुपात 927 से कम है, जिसका प्रमुख कारण स्त्रियों की मृत्यु दर का अपेक्षाकृत उच्च होना है। वर्ष 1981 में भारत का सामान्य लिंगानुपात 935 और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 932 था, जो घटकर 1991 ईस्वी में क्रमशः 927 और 922 हो गया। इस प्रकार 1990 के दशक में सामान्य लिंगानुपात में 8 अंकों की और अनुसूचित जाति में 11 अंकों की गिरावट अंकित की गई। निर्धनता तथा चिकित्सा एवं प्रसूत सुविधाओं की कमी के कारण कुपोषण से उत्पन्न बीमारियों और प्रसूत जन्य मृत्युओं की अधिकता होने से स्त्रियों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में उच्च पाई जाती है, जो लिंगानुपात को कम कर देती है। इसके विपरीत अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात उच्च है। वर्ष 1981 और 1991 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात क्रमशः 983 और 972 था, जो सामान्य लिंगानुपात से क्रमशः 48 और 55 अंक अधिक था। कई जनजातियां ईसाई धर्मावलंबी हैं, जिनमें स्त्री मृत्यु दर सामान्यतः निम्न पाई जाती है, और विभिन्न कबीलों के मध्य युद्ध होते रहने से कुछ जनजातियों में पुरुष मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। कुछ जनजातियों में स्वाभाविक लिंगानुपात ही उच्च रहता है। इस प्रकार बिन कारणों से जनजातियों में लिंगानुपात उल्लेखनीय रूप से उच्च पाया जाता है। तीसरा, प्रादेशिक भिन्नता। भारत के विभिन्न भागों में लिंगानुपात में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। जनगणना 2001 के अनुसार देश का सर्वोच्च लिंगानुपात 1058 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष केरल राज्य में है, जबकि निम्नतम लिंगानुपात केंद्र शासित क्षेत्र दमन एवं दीव 709 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष में पाया गया है। इस प्रकार राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र के स्तर पर उच्चतम और निम्नतम लिंगानुपातों के मध्य 349 अंकों का अंतर है। संपूर्ण भारत में मात्र एक राज्य केरल 1058 और एक केंद्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी 1001 में ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। उच्च लिंगानुपात वाले अन्य राज्य केंद्र शासित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ 990, तमिलनाडु 986, मणिपुर 978, मेघालय 975, उड़ीसा 972, हिमाचल प्रदेश 970, कर्नाटक 964, उत्तरांचल 964, गोवा 960, त्रिपुरा 950, लक्षद्वीप 947, झारखंड 941, मिजोरम 938 और पश्चिम बंगाल 934। देश के औसत लिंगानुपात 933 से कम किंतु 900 से ऊपर लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं। देश के औसत लिंगानुपात 933 से कम किंतु 900 से ऊपर लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं असम 932, राजस्थान 922, महाराष्ट्र 922, बिहार 921, गुजरात 921, मध्य प्रदेश 920, नागालैंड 909 और अरुणाचल प्रदेश 901 तथा जम्मू एंड कश्मीर 900। 900 से कम लिंगानुपात वाले प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश 898, आंध्र प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव। भारत के राज्यों तथा जनपदों के अनुसार लिंगानुपात के आंकड़ों के विश्लेषण से जो प्रमुख तथ्य सम्मुख आते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी भारत में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर 900 स्त्रियों से ऊपर है। केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। शिक्षा, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा की उन्नति, स्त्रियों के सामाजिक उत्थान, चिकित्सा तथा प्रसूत सेवाओं के विस्तार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि के परिणाम स्वरूप केरल में मृत्यु दर बहुत कम 6 प्रति 1000 है और शिशुओं की मृत्यु दर इससे भी कम होने का अनुमान है। ऐसा संभवतः मातृत्व मृत्यु दर में कमी के कारण संभव हुआ है। उच्च लिंगानुपात के लिए अन्य कारण यह भी है कि केरल में नगरीकरण 28% कम हो पाया है, अतः इस प्रदेश से रोजगार की खोज तथा उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों का प्रवास अन्य राज्यों में स्थित नगरों के लिए होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो गई है। दूसरा, मध्यवर्ती भारत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कि जनजातीय क्षेत्रों में लिंगानुपात उच्च है। इसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों में लिंगानुपात देश के औसत से ऊपर है। तीसरा, उत्तरी भारत के पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बहुत कम है। उत्तरी मैदान के पूर्वी राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में लिंगानुपात उपर्युक्त राज्यों की तुलना में कुछ अधिक है। चौथा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में लिंगानुपात उच्च है और कुछ जनपदों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका मुख्य कारण पुरुषों का रोजगार के लिए मैदानी नगरों के लिए प्रवास है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाती है। पांच, भारतीय नगरों में बाहर से आने वाले अप्रवासियों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि रोजगार की खोज में अथवा शिक्षा आदि अन्य उद्देश्यों से पुरुष अपने परिवार को गांव में छोड़कर प्रायः अकेले नगरों में आते हैं। इससे नगरों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या काफी बढ़ जाती है। यही कारण है कि देश के जिन भागों में नगरीकरण का स्तर उच्च है वहां लिंगानुपात निम्न है। दिल्ली 821 और चंडीगढ़ 773 इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां लगभग 90% जनसंख्या नगर में निवास करती है। इस प्रकार उच्च नगरीकृत जनपदों में लिंगानुपात निम्न पाया जाता है। छठा, देश के जिन भागों में सैनिक छावनियों की प्रमुखता है और प्रतिरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक रहते हैं, वहां सैनिक के रूप में पुरुष अप्रवासियों की संख्या में अधिक वृद्धि से लिंगानुपात कम हो जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निम्न लिंगानुपात 846 का यही कारण है। 1981 में इसका लिंगानुपात 760 और 1901 में मात्र 318 था। प्रवास प्रधान ऐसे क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक परिवर्तनशील रहता है।